व्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी मनुष्य की हैसियत से अपना जीवन जी रहे हैं और मनुष्य होना यानी एक बहुत जिम्मेदारी का काम हमारे ये मिला है। अपना आत्म कल्याण की करने की जिम्मेदारी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये सबसे बड़ा दायित्व है। इस दायित्व में और सारी चीजें भी समाहित हैं, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र, यहां तक कि प्राणी मात्र के कल्याण के प्रति अपनी भावना रखना ये भी दायित्व है। लेकिन सबसे बड़ा दायित्व है अपने आत्मोन्नति का। और कोई भी जीवन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मोन्नति का कोई उपाय कर सके। इसलिए पिछले दिनों हम सभी ने अपनी आत्मोन्नति के लिए श्रद्धा, आत्मज्ञान और सदाचरण की चर्चा की है। हमारे जीवन को हम जितना अच्छा बना सकें हमें इस चीज का प्रयत्न करना चाहिए। और जीवन बनता है अच्छा श्रद्धा, विवेक और क्रिया से। और यही कारण है कि एक सदगृहस्थ अगर अपने जीवन में श्रद्धा, विवेक और क्रिया इन तीनों को संतुलित बना लेता है तो उसे शावक कहते हैं। शा श्रद्धा का प्रतीक है, वह विवेक का प्रतीक है और का जो है वो क्रियात्मक होने का प्रतीक है। और इन तीनों के बीच का संतुलन, इसे ही दूसरी भाषा में अपन कहते हैं भक्ति, ज्ञान और कर्म। जहां एक ओर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरी तरफ हमारे अपने चारों तरफ जो परिवेश हमें मिला है, जिस समाज, जिस परिवार और जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसके बारे में भी हमें क्या करना चाहिए, ये सब हमारे मन में बना रहे। आत्मोन्नति करने वाला अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ कर सकता है क्या? ये प्रश्न मन में सहसा उठेगा। जबकि मैं सोचता हूं कि जो अपने आत्म विकास में लगा है वो ही सचमुच अपने पारिवारिक, सामाजिक और देश और प्राणी मात्र के प्रति दायित्व को ठीक ठीक निर्वाह कर सकेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धा, विवेक और आचरण से समन्वित होगा वही तो एक अच्छे परिवार को निर्माण कर सकेगा। जो व्यक्ति श्रद्धावान, विवेकवान और आचरणवान है उसी से तो समाज की उन्नति होगी, उसी से तो देश की उन्नति होगी, उसी व्यक्ति से प्राणी मात्र का कल्याण होगा। व्यसनी व्यक्ति से किसी का कल्याण नहीं होता। बुरे आचरण और अश्रद्धा और अविवेक पूर्वक जीवन जीने वाले से किसी का कल्याण नहीं होता, स्वयं का भी आत्म कल्याण नहीं होता। इसलिए एक शावक होने के नाते हमारा पहला कर्तव्य है कि हम बहुत श्रद्धावान, विवेकवान और आचरणवान बने। श्रद्धा क्या चीज है ये अपन कई बार समझ चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मुझे सहसा याद आ गया। जैनेन्द्र कुमार ने अपने जीवन का संस्मरण लिखा। जैनेन्द्र कुमार को लोग बहुत कम जानते होंगे, मेरे ख्याल से तो यहां पर मैं हाथ उठवाऊं तो शायद कोई एक हाथ कोई मिलेगा कि हाँ जैनेन्द्र कुमार कोई हुए। बहुत बड़े साहित्यकार हुए, अब नहीं रहे। हिंदी की किताबों में उनका कभी नाम कहानीकारों में किसी ने पढ़ा हो तो उसे याद भी हो। उन्हें अपने जीवन की घटना लिखी कि वो राम कथा सुनने जाया करते थे। रोज कोई पंडित जी आए थे तो उनकी राम कथा सुनते थे। रामचंद्र जी का जीवन चरित्र सुनकर के उनके मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती थी। जब एक दिन पूरा जीवन चरित्र हो गया तो घर लौटे तो देखा कि लॉन में घर के बाहर और उनका बेटा और बेटी दोनों खेल खेल रहे। क्या खेल खेल रहे थे वो? वो किसी के यहां पर मकान बनने के लिए रेत आई थी तो बच्चे रेत में खेल खेलते हैं, अपना अपना घर बनाने का खेल खेलते हैं। तो एक पैर रखा, उस पर रेत थपथपाई और पैर धीरे से नीचे से खींच लिया, बन गया घर। बस फिर उसमें चिमनी लगाओ। तो चिमनी का ख्याल जो है वो बेटी को तो रहेगा, बेटे को नहीं रहेगा। तो जब सब घर बन गया तो उसने कहा देखा मेरा कितना सुंदर घर बना। तो उसने कहा नहीं, इसमें रसोई में से धुआं कहां से निकलेगा, चिमनी लगाओ। ढूंढने गए वो, मिल गई एक तो काड़ी चाहिए थी सीख, लगा दी उसमें, ये हो गई चिमनी। सब पूरा हो गया, लेकिन बेटे के मन में तो अहंकार था कि बहन से मेरा घर ज्यादा सुंदर है। आज भी अपन के अंदर यही तो अहंकार रहता, और क्या। बेटे को पढ़ने लिखने की फुर्सत नहीं रहती, कैसे माँ बाप की संपत्ति तो सब मिल ले। सो आज देख लो कि बेटे लोग उतना नहीं पढ़ रहे हैं जितना की बेटियां पढ़ रही। वर्तमान में देखने में आता है बात, कोई होंगे जो कि इस तरह बेटा आया है वो पढ़ रहा है और इतनी कम उम्र में। और मैं तो जब पहली बार मिला था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि आपने जिस सीए को करने में 5-5 साल लगा देते हैं लोग, आपने सीए के ग्रेजुएशन के साथ सीए कर लिया, सीएस कर लिया और ये सारी प्रोफेशनल डिग्री एक साथ ले लेना, कोई आसान बात नहीं है। और वो आईएएस के लिए दिल्ली जाने वाले आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के। ये एकाध कोई बेटा हो सकता है लेकिन बहुत कम ही है। वो लिखते हैं कि उस बेटे के मन में ये अहंकार कि मैं तो बेटा हूं। वो अपनी बहन को बोलता है कि मेरा घर तुमसे भी अच्छा है। तो ठीक है, अच्छा है तो कौन कौन कह रहा है कि नहीं है अच्छा। लेकिन बेटे को इसमें चैन नहीं है तो बोलता कि तुम्हारे घर से मेरा घर दूना अच्छा है। अब जब दूना अच्छा कहा तो बेटी के मन में भी आया कि इतनी गिनती तो हम भी जानते, दस्तक तो हमने भी सीखी स्कूल में, भले ही छोटे हैं अभी। उसने कहा कि हमारा घर चौगना अच्छा है, दूने से दून चौगना हो गया। अब भैया जी ने भी कम नहीं थे कि ले 8 गुना। अब 8 गुना के बाद में जो है, 8 गुने के बाद 10 के बाद तो गिनती आती नहीं, 16 तो पता ही नहीं उनको। तो बहन ने कहा कि देखो हमारा तो सीधी सीधी बात है कि अब 8 गुने से दूना तो क्या बात ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो हमारा घर तो रामचंद्र जी बराबर बड़ा और बहुत सुंदर। अब रामचंद्र जी तक बात पहुंच गई, अब बेटा थोड़ी मुश्किल में पड़ा। अब उसने सोचा कि अपन तो गिनती से चल रहे हैं, हमने दूना कहा तो इसने चौगना, हमने चौगना कहा तो इसने 8 गुना। अब इसने कह दिया कि रामचंद्र जी बराबर, तो उसने कहा हमारा 2 रामचंद्र जी बराबर। अब जैसे ही उसने कहा कि 2 रामचंद्र जी बराबर बड़ा और सुंदर है, तो बेटी बहुत जोर से हंसी, बोलती कि रामचंद्र जी तो एक ही है। तब जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि मैंने महीनों उन विद्वान की रामचंद्र जी की कथा सुनी, लेकिन मेरे मन में जो श्रद्धा आई उससे कहीं अधिक श्रद्धा इन बच्चों के भीतर है कि रामचंद्र जी हैं और एक हैं और वे ही जो है और हमारे लिए आदर्श है। ये श्रद्धान है अपने अंदर है, ऐसा श्रद्धान। अपन तो क्षण क्षण में बदलते हैं भगवान, इनमें संतोष नहीं तो इनके चरणों में, ये बेदी पे नहीं, इतने सुनी है कि ये पे चमत्कार है, ये पे चलो रे कहूं तो लाग लग जाए। श्रद्धान वो है जहां की हम वीतरागता को एक मान करके और अडिग और स्थिर होकर के उस वीतरागता की उपासना करते हैं। शावक वीतरागता के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं भटकता है, ये है उसकी श्रद्धा। वो वीतरागता विभिन्न प्रकार से दिखाई पड़े वो अलग बात है, नाना प्रकार की मूर्तियों में दिखाई पड़े अलग बात है, लेकिन वीतरागता तो वीतरागता है, वो एक ही है। ऐसा श्रद्धान, और इतना ही नहीं विवेक, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, किसी और को बताना पड़े कि आपको ये करने योग्य है आपको ये करने योग्य नहीं है, तो इसके मायने हैं कि अभी अभी हम शावक नहीं हुए हैं। शावक तो वही है जो विवेकवान है, जो करने योग्य को करता है और नहीं करने योग्य को, इदम करणीयम इदम ना करणीयम, इदम आचरणीयम इदम ना आचरणीयम, इति प्रतिज्ञाएं नियमो जायते। वह ऐसा नियम स्वतः ही स्वप्रेरणा से ग्रहण कर लेता है अपने विवेक से, उसके अंदर इतना डिसिप्लिन स्वयं आ जाता है, अनुशासन स्वयं आ जाता है, उसे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं, ना उसे किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मेरा अपना कर्तव्य है कि मैं अपना जीवन विवेक पूर्वक जीऊं। अगर अपन बात गौर से देखें तो हम सब लोग जिस तरह जितनी लापरवाही में अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम स्वयं ही मुश्किल में पड़ेंगे कि अरे ऐसा जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है, अपन ने कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरे करने योग्य था या नहीं था, और मैं करता जा रहा हूं, मेरे जो करने योग्य है उसके लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। ऐसा विवेक उसके भीतर जागृत होना चाहिए। और आचरण एक श्रद्धा और विवेकवान व्यक्ति हिंसा करके आनंद नहीं मानता, यही उसके आचरण की श्रेष्ठता है। एक श्रद्धावान और विवेकवान व्यक्ति कभी झूठ बोल करके वाहवाही नहीं लूटता। एक श्रद्धा और विवेकवान व्यक्ति कभी दूसरे की धन संपदा चुरा करके उसे संक्लेशित करता है, ऐसा उसके मन में भाव भी नहीं आता। एक श्रद्धा और विवेकवान व्यक्ति दूसरे के प्रति अपनी दृष्टि खोटी तो कर ही नहीं सकता, और ना ही धन संपदा और वैभव जुड़ने पर अपना बड़प्पन मानेगा, अगर वास्तव में श्रद्धा और विवेकवान होगा तो। ये पांचों चीजें जिन पर हम कई प्रकार से विचार कर चुके हैं, हमें आज फिर विचार करना चाहिए कि ये पांचों हमारे आचरण में आई हैं कि नहीं। मद्यमांस मदुत्यागी सहानुव्रत वंचकम अष्टौ मूल ग्रहान गुणा नाहुर गृहिणाम शमनोत्तम। एक सदगृहस्थ का धर्म क्या है कि मद्यमांस मदुत्यागी, मांस मदिरा और शहद, इन तीनों चीजों का त्याग करे, और साथ में सहानुव्रत पंचकी, इन पांच बातों से मुक्त हो, हिंसा में आनंद नहीं माने, झूठ बोल करके चोरी करके दूसरे के प्रति अपनी दृष्टि खोटी करके, या पांच इंद्रिय और मन के विषयों में लग करके, या धन संपत्ति में अपना बड़प्पन ना माने, ऐसे गृहस्थ को ही शमनोत्तमा, जो शमनों में उत्तम है, ऐसे तीर्थंकर भगवान ने प्रशंसनीय माना है, श्रेष्ठ माना है। बाकी सब तो गृहस्थी तो सबके लगी हुई है, सब अपना जीवन जी रहे हैं, सब अपने को गृहस्थ मानते हैं, लेकिन गृहस्थ में प्रशंसनीय और श्रेष्ठ वो है जो कि इन चीजों से विमुख है, ऐसे सदाचरण का पालन करता है। आज इन चीजों से हम कई लोग तो डायरेक्ट नहीं बच पा रहे हैं, कई लोग इनडायरेक्ट नहीं बच पा रहे हैं। मांस और मदिरा और शहद, ये तीनों चीजें आखिरी समय में, मुझे पहले एकदम याद आ गया, दो चीजें आप, दो घटनाएं सुना देता हूं आपको एक साथ। विनोबा भावे आखिरी समय में संलेखना ले रहे थे, ले भी ली उन्होंने। आचार्य महाराज के पास समाचार आया, जब संलेखना की चर्चा चलेगी तब उनकी संलेखना के बारे में कहूंगा, पर वो जो एक चीज थी कि आचार्य महाराज के पास जब समाचार आया कि उन्हें आशीर्वाद दें, तो आचार्य श्री ने 1982 में और आशीर्वाद के साथ ये समाचार भेजा कि सुना है कि बाबा दूध के साथ शहद भी लेते हैं, शहद तो खाने योग्य नहीं है। तब वहां से समाचार आया था कि श्री गुरु ने हम पर इतनी देर से कृपा क्यों की, हमें तो मालूम ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे कि ये खाने योग्य है, हमें पहले कह दिया होता तो हम इसे बहुत पहले छोड़ देते, अब अगर हमें आज समाचार मिला है तो आज ही से हम शहद का शेष जीवन भर के लिए त्याग करते हैं। ये उनका उनका वचन था। हम और आप विचार करें इस चीज को। दूसरा उदाहरण, जब कभी बंबई में ताजमहल होटल में कोई डेपुटेशन आता था फॉरेन के लोगों का, किसी यहां पर इंडस्ट्रियल कोई उनकी मीटिंग हुआ करती थी, तब उसमें सरयू दफ्तरी भी रहती थी, वे उसे मैनेज करती थी उनके भोजन को। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शिष्या है वो, उनका उदाहरण बता रहा हूं, उनके जीवन का संस्मरण इसी हनी के बारे में। शहद को बोलते हनी। जब उन्होंने लोगों के कहने पर, जापानीज के कहने पर, और उन्हें आइसक्रीम दी तो सादा आइसक्रीम दी, तो उन लोगों ने कहा कि हमें आप हनी आइसक्रीम क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा आप हमारे मेहमान हैं, हम मेहमान को तो अच्छी चीज खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा मतलब क्या हनी आइसक्रीम अच्छी नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, हम अपने मेहमानों को मधुमक्खियों का उगाल, मधुमक्खियों को वॉमिट कैसे खिला सकते हैं? ओ हनी ऐसा है, वो मधुमक्खियों को वॉमिट है, बमन है, बोलते हां। तब उन सब ने उन्हीं के सामने उसी जगह पर और कहा कि आज से हमारा हनी का त्याग है, शहद का त्याग है, और हम अपने बच्चों को आज तक बाजार में बिकने वाली आइसक्रीम नहीं छुड़वा पाए हैं जिसमें कि हनी भी रहता है। आज हम अपने बच्चों को जिन बिस्किट्स में और एग पड़ा हुआ है हम वो नहीं छुड़वा पा रहे, हम खुद नहीं छोड़ पा रहे। जो सुबह सुबह से ब्रेड आती है, उस ब्रेड में किस तरह उसके बनने की प्रोसेस है कभी सोचा आपने? किस तरह से उसमें और जीव राशि उत्पन्न होती है और उसी में मरण को प्राप्त करती है? हैवी फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, शराब बनती तब तो उसमें ऐसा स्वाद आता है, C2H5OH बनता, एथाइल अल्कोहल बनता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती, तब वो स्पंजी हो जाती और टेस्ट के लिए उसमें एग तो कंपलसरी होता, और हम वो ब्रेड भी खा रहे हैं और बच्चों को भी खिला रहे हैं, क्योंकि कौन बनाए नाश्ता सबेरे से परांठे, लाओ ब्रेड का डिब्बा और पैकेट और खाओ। हम अपने को श्रावक मानते हैं, हम कितनी बढ़िया से ठाटवाड़ से पूजा करते हैं, अभिषेक तो हम रोज करते हैं और बिल्कुल समय से करते हैं, लिखा है समय उसमें, तो अभिषेक काम तो बिल्कुल समय पे आके करते हैं, बढ़िया। और हम अपने बच्चों को और हम अपने चौके तक में ये चीजें ला रहे हैं, ब्रेड और बिस्किट्स, इन सब में, जबकि मांस है। और इतना ही नहीं, हमने आपको कॉमन इसमें दोपहर के चर्चा में कहा भी था, बच्चों को भी कहा था, बच्चे तो थोड़े थोड़े समय के लिए छोड़ रहे हैं, चॉकलेट्स में जो बाल हैं छोटे छोटे से, उन बालों को एमिनो एसिड के सब्स्टिट्यूट एल-सिस्टीन में कन्वर्ट करके और वो उसमें मिलाए जा रहे हैं बच्चों के चॉकलेट्स में, चिकलेट्स में, वो भी हम खा रहे हैं। अमूल वालों से कई बार कहा जा चुका है कि वे लोगों के साथ धोखा ना करें। सबसे बड़ी कंपनी है जो वाटर, जो कि पाउडर बनाती, मिल्क पाउडर बनाती है। मिल्क पाउडर में विटामिन डी के लिए तो बहुत बड़े बड़े सिस्टम लगे हैं, और जिसमें कि वो विटामिन डी सनराइज सन रेज से उसमें दे देते हैं, लेकिन विटामिन ए के लिए उन्हें मिलाना पड़ता है कॉड लीवर ऑयल, मछली का तेल, जो हम बाजार में दूध पाउडर लेकर के आते हैं। ध्यान रखें कि उसमें विटामिन ए के नाम पर कॉड लीवर ऑयल मिला हुआ है। एक केजी में एक चम्मच पर्याप्त होता है कॉड लीवर ऑयल, मछली का तेल, कॉड नाम की मछली है उसके, उसका ऑयल है ये, और हम आराम से खा रहे हैं। कस्टर्ड के बारे में सामग्री मैंने पहले भी कहा था आपसे, ऊपर बना रहता है मक्के का आटा, लेकिन कस्टर्ड इज नथिंग बट ए पेस्ट ऑफ एग इन द मिल्क विथ शगर। शक्कर के साथ में जब दूध में अंडे को फेंटा जाता है तब बनता है कस्टर्ड। और यहां पर कितने लोग हैं जिनने की कस्टर्ड छोड़ दिया होगा, मुश्किल है। दूध पाउडर, कस्टर्ड, ब्रेड, बिस्किट्स, ये सब इनडायरेक्ट मांस और शराब को घर में लाने की स्थिति है। बहुत विचार करना पड़ेगा। मद मांस मदुत्यागी, हम वे लोग हैं, वे श्रद्धावान और आत्मज्ञान से संपन्न लोग हैं, हम अत्यंत श्रद्धालु और आत्मज्ञान से परिपूर्ण अपने को मानने वाले लोग हैं अपन, और हमारे आचरण में अगर ये चीजें शामिल हैं तो इसका मतलब है कि अभी सदाचरण की तरफ हमारा एक कदम भी नहीं बढ़ा है। हाँ, भले ही हम बहुत प्रकार से व्रत उपवास रखते हों, लेकिन ये चीजें अगर हमारे जीवन में शामिल हैं तो उन व्रत उपवास इत्यादि का फल कितना मिलेगा बताइए। विचार करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने हमारे कल्याण के लिए ही तो ये सब बातें कही हैं। उनका ऐसा क्या स्वार्थ था कि वो इन सब चीजों को हमें कहें? नहीं, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उनका तो यही था कि सब जीव परमार्थ में लग जावे, सब अपना कल्याण कर ले, इसलिए ये चीजें कही गई। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया में इन सब पर विचार करके और इनसे मुक्त होने के लिए संकल्प लें। जो अहिंसा में विश्वास रखता है वो पाक्षिक शावक है। जो अपने जीवन में इन सब नियमों को धारण करके शुद्ध आचार विचार की प्रक्रिया शुरू कर देता है वो नैष्ठिक शावक है। और जो जीवन के अंत में और जीवन भर की साधना के फलस्वरूप और अपनी देह से अनाशक्त होकर के देह का त्याग करता है संलेखना पूर्वक, वो साधक श्रावक कहलाता है। विचार करें कि हम इन तीनों में से कोई प्रकार के श्रावक हैं या नहीं है। हम अहिंसा धर्म में विश्वास रखने वाले हैं अगर पाक्षिक श्रावक, तब अहिंसा धर्म में सबसे पहले जरूरी है कि हम इन सब चीजों का त्याग करें, तभी हमारे जीवन में अहिंसा धर्म आ सकता है। ये धीरे धीरे इनडायरेक्ट सारी चीजें, और जब चर्चा आई है तो हम इसमें यह भी ध्यान रखें कि यह जो सामूहिक रात्रि भोजन की परिपाटी है उस पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, दिन में भी जो बुफे सिस्टम से हम लोग भोजन की परंपरा शुरू कर चुके हैं उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। ये हमारे अहिंसा धर्म को नष्ट करने वाली दोनों प्रक्रियाएं हैं। अब शायद आगे आने वाले समय में हमें बहुत हिम्मत करके ये संकल्प लेना होगा कि जहां हमें रात्रि में भोजन के लिए बुलाया जाएगा वहां हम जाने से इनकार कर देंगे, या हम जाएंगे तो वहां खड़े होकर के उसका बहिष्कार करेंगे कि हम जैन हैं। हम जैन क्यों कहें, हम मनुष्य हैं ऐसा कहें। हम आदमी हैं, हम मनुष्य हैं, अभी हमारे भीतर इतनी इंसानियत अभी बाकी है, ऐसा कहें बहुत गौरव के साथ कि अभी हम मनुष्य हैं, इसलिए हम पशुवत जब चाहे तब नहीं खाएंगे। हमारे लाइफ का एक डिसिप्लिन है, जो कुछ दिख गया उसी में मुंह मार दिया, ये तो सुबह से शाम तक पशुओं को देखने में आता है, जब चाहे तब नहीं। ये डिसिप्लिन है कि सूर्य जब तक अपनी किरणें फैलाएंगे तब तक हमारे जीवन में खान पान की प्रक्रिया चलेगी, और जब सूर्य विदा ले लेंगे तब फिर हम अपने खान पान की कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे। ये चीज हमें बहुत अपने जीवन में शामिल करने के लिए विचार करना चाहिए। सब चीजें कर रहे हैं अपन, लेकिन ये अनिवार्य तम चीजें हैं। आपको शायद मैंने मैडम गांधी का उदाहरण सुनाया था कि जब विदेश में जाकर के और उन्होंने आलू प्याज से रहित, अंडे से रहित थाली मंगाई थी, तो उन्होंने कहा कि आप सीधा कहिए ना, जैन थाली चाहिए। तब उनका ये वाक्य था कि ये चीज कितने वर्षों में कितनी साधना से ये सिंबल बन पाया होगा, कितने मुश्किल से लोगों ने ये परंपरा बनाई होगी, ये पहचान बनाई होगी कि रात में भोजन नहीं करते हैं। जैसे वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे, या जैनी जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है, गांधी जी का प्रिय भजन रहा है। हम दूसरे की तकलीफ भी नहीं पहुंचाते, हम दूसरे जीव राशियों का कितना विघात होगा अपने थोड़े से सुख के लिए। दिन भर डला हुआ है भोजन पान के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि भोजन पान के लिए समय ना हो। अनंत जीव राशि जब उत्पन्न होती है और वायुमंडल में संचरित होती है तभी क्या हमारे भोजन का समय होता है, उसमें वो जीव राशि शामिल हो जाती है, तो क्या हम उसके मरण में कारण नहीं बनते हैं? फिर हमने कहां कह सकते हम कि हमने मद मधुमांस का त्याग कर दिया है? रात्रि भोजन त्याग करने वाला ही गौरव से कह सकता कि हां मैं मद मधुमांस का त्यागी, वरना नहीं कह सकता। उसको दोष तो लग ही रहा है क्योंकि जीव राशि उसके साथ मिक्स अप हो जाती है, बची नहीं सकते। इन छोटी सी चीजें लगेंगी, लेकिन ये सब अहिंसा धर्म को हमारे जीवन में लाने में कारण बनेंगी। गांधी जी हमेशा कहा करते थे, जब लोग उनसे कहते थे कि आप तो जैनियों जैसा आचरण करते हैं, जैनी हैं क्या आप, तो उनका एक ही जवाब होता था कि अहिंसा और सत्य में विश्वास रखने से अगर कोई जैन होता है तो मुझे ऐसा जैन कहलाने में कोई परहेज नहीं है। मैं गौरव से अपने आप को ऐसा कह सकता हूं क्योंकि मैं अहिंसा और सत्य की मानता नहीं हूं, मैं तो प्रयोग करता हूं सत्य और अहिंसा के प्रयोग। विनोबा की किताब पढ़िए, कभी पढ़ना हो तो अहिंसा की तलाश में, और गांधी जी की पढ़नी हो तो सत्य के प्रयोग। ये प्रयोग करने वाले लोग थे, ये सिर्फ संगोष्ठी करने वाले लोग नहीं थे कि अहिंसा पर एक खुला सम्मेलन रख लो, तालियां पीट करके घर चले जाओ कि अहिंसा पर क्या विचार रखे थे साहब। अहिंसा पर अहिंसा अकेला विचार नहीं है, अहिंसा तो जीवन शैली है, और उस अहिंसा और सत्य के लिए हम अपने जीवन में प्रकट करने के लिए जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें करनी चाहिए कोशिश भैया। हमने पिछले दिनों में इसी अहिंसा सत्य अचौरी ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो पांच जीवन को ऊंचे उठाने वाली अच्छे बनाने वाली बातें हैं, इन पर बहुत प्रकार से विचार किया है, और आज इन पांचों अनुव्रतों के साथ जैसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा कि तीन मकार का भी त्याग करना, वैसे तीन मकार और भी हैं आज वर्तमान के, सबको मालूम होंगे नहीं मालूम? अरे हम तो सोच रहे थे यहां के लोगों को तो मालूम ही होना चाहिए। मद मांस और मधु ये तीन मकार हैं, ऐसे ही वर्तमान के मंच माला और माइक ये भी तीन मकार हैं। देख लो आप, हर आदमी के अंदर रहता है ये कि कब मिलेगा मुझे, ये भी तीन मकार उसी के साथ है। पर अभी तो मद मधु मांस से बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो इनसे बच जाता है उसी का जीवन श्रेष्ठ बन सकता भैया, वही अपने को इस देश का एक अच्छा नागरिक कह सकता है, वही प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भा सकता है। जिस धर्म, मेरे ख्याल से तो किसी भी धर्म में, मेरे भारतीय मूल के धर्म, मैं तो ये कह दूं अगर तो ज्यादा ठीक रहेगा, भारतीय मूल के किसी भी धर्म में हिंसा को तो धर्म नहीं माना होगा। मांस भक्षण, मदिरा पान और मधु पान करने के लिए किसी ने भी धर्म तो नहीं माना होगा, इनको सबने पाप ही माना है। इसलिए हम सबको विचार करना चाहिए कि हम ऐसा धर्म अपने जीवन में धारण करें जिससे कि हमारा और प्राणी मात्र का कल्याण हो। असल में हम अपनी सीमाएं निर्धारित कर लें, हम अपनी मर्यादाएं निर्धारित कर लें तो हम अनायास ही इन सब चीजों से बच सकते हैं। अब जरा सा अपनी मर्यादा और सीमाओं को निर्धारित करने पर भी अपन आगे बढ़ते हैं। दिग्व्रजम दिग्व्रत मनर्त दंड प्रथम च भोगोपभोग परिमाणम। आचार्य भगवंतों ने जिस व्यक्ति ने अनुब्रन्नाद गुणा नाम माख्यांति गुण व्रतान न्याया आर्य अर्थात तीर्थंकरों ने एक गृहस्थ सदगृहस्थ के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जहां एक तरफ इन पांच पापों से बच करके और इन पांच व्रतों को धारण करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने की बात कही, वहीं पर इन व्रतों के गुणों को बढ़ाने के लिए तीन और गुण व्रत भी रखे हैं जिनमें दिशाओं की सीमा कर लेना, भोगोपभोग की मर्यादा कर लेना और व्यर्थ में पाप से मुक्त हो जाना, ये तीन बातें भी शामिल करी। उन पर अपन एक एक पर धीरे धीरे विचार करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी श्रद्धा है, हमारे पास आत्मज्ञान है, हम अपने आचरण को भी अच्छा बनाने के लिए भरकस प्रयत्न करने के लिए तत्पर हैं। जितनी हमारी जिसकी क्षमता है उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप अपनी मर्यादाएं बना लें। अपने आप को एक निश्चित सीमा में रख लेने से सीमा के बाहर बहुत सारे व्यर्थ के पाप से अपन बच जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी गंतव्य पर पहुंचना चाहे तो एक ही दिशा में उसे चलना पड़े। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो सोचे कि वो हर दिशा में थोड़ा थोड़ा चलेगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, ऐसा तो संभव ही नहीं। मुझे अपने घर पहुंचना है तो मैं अपने घर की तरफ तो एक कदम रखूं और दूसरे के घर की तरफ 100 कदम रखूं तो बताइए कभी अपने घर पहुंचूंगा? बहुत सीधी सी चीज है। मैं अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूं तो अपने जीवन को अच्छा बनाने का तो एक कदम रखूं और अपने जीवन में बुराइयों के लिए 100-100 कदम रखूं तो क्या मेरा जीवन अच्छा बन सकता? इसलिए मुझे बुराइयों से बचने के लिए मुझे एक मर्यादा तो निश्चित करनी पड़ेगी। जैसे कि हम खेती करने वाले लोग क्या करते हैं कि फसल अच्छी तब आएगी जब हम उस खेत की चारों तरफ से बाउंड्री वाल बना करके सुरक्षा कर देंगे, नहीं तो कोई कभी भी आकर के और उसको गड़बड़ कर जाएगा, तहस नहस कर जाएगा। तो ऐसे ही हमें अपने जो लिए गए व्रत हैं, जो पांचों पापों से बुराइयों से बचने का हमने संकल्प कर लिया है, तो हम अपनी सीमाएं निर्धारित कर लें ताकि सीमा के भीतर ही मैं अल्प सावध करके या थोड़ा बहुत मैं अपने जीवन यापन के लिए जो भी मेरे से और किसी दूसरे जीव का थोड़ा बहुत बिगाड़ हो भी जाएगा लेकिन मैं अपनी सीमा के भीतर रह करके ही अपना कार्य करूंगा, उसके बाहर मैं किसी भी जीव की क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, क्या ऐसी अपन दिशाओं की सीमा नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं हम चाहें तो। और जब तक हम अपने आप को मर्यादित नहीं करेंगे, अपने आप को सीमाओं में नहीं बांधेंगे, सुबह से शाम तक के रहन सहन की जब तक कोई सीमा निर्धारित नहीं करेंगे, अपने आवागमन की कोई सीमा निर्धारित नहीं करेंगे, तो ये यात्रा तो अंतहीन है भैया संसार की। आप किसी भी दिशा में कितने भी चलते जाइएगा कहीं जाकर के स्टॉप नहीं होगा। 5 इंद्रियों और मन की यात्रा है। संसार की यात्रा के मायने क्या है 5 इंद्रियों और मन की यात्रा? हाँ, 5 इंद्रियों और मन की जितनी लंबी चौड़ी संसार की यात्रा करनी हो करते रहिएगा, कभी अंत नहीं आएगा उसका। तो एक सीमा तो करनी पड़ेगी कि हाँ मैं 10 दिशाओं में इतना ही आवागमन करूंगा अपने सांसारिक कार्यों को लेकर के, इससे अधिक मैं अब अपना जीवन फैलाऊंगा नहीं, मैं तो समेटने के लिए आया हूं ताकि ये संसार मेरा धीरे धीरे सिमटता जाए। संसार आवागमन का ही नाम है, संसरति इति संसारा, जहां निरंतर आवागमन बना हुआ है। जीव इधर से जन्म मरण करके दूसरी जगह जन्म लेता है, ये आवागमन उसका चलता रहता है। इस आवागमन को सीमित करना, तब जाकर के हम आवागमन से मुक्त हो पाएंगे, तब हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, तब हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन कहलाएगा। तो बाहर के आवागमन को बाहर से होने वाले मेरे जो पाप प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्ति को सीमित करने के लिए मुझे दसों दिशाओं में एक सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए। सीमा कैसे निर्धारित की जाए ये हर व्यक्ति सहज भाव से जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो कर सकता है। बहुत आसान सा है कि मैं अपने देश से बाहर कोई भी सांसारिक कार्य के लिए नहीं जाऊंगा। नहीं कर सकते हैं? मेरे अपने देश में मेरे देश की जो सीमा है उसमें मैं कोई भी सांसारिक कार्य के लिए उससे बाहर नहीं जाऊंगा। जो भी है इसी के भीतर करूंगा ताकि मैं बाहर होने वाले जो विकल्प हैं, संकल्प विकल्प जो पाप हैं, उनसे मैं आसानी से मुक्त हो जाऊं। मैं अपना व्यापार करने कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं अपने किसी धर्म कार्य से जाऊं तो बात अलग है, लेकिन मैं अपने संसार बनाने वाले किसी कार्य से और नहीं जाऊंगा, अपने देश में ही रहूंगा। और आज वर्तमान में देखा जाए कि अगर युवा पीढ़ी इस चीज को ग्रहण कर लेवे तो देश का भी कल्याण हो जाएगा। आज यहां से अच्छी पढ़ाई पढ़ के और चूंकि सीमाएं निर्धारित नहीं की हैं तो हम अच्छे से अच्छी पढ़ाई पढ़ के उसका लाभ अपने देश को न दे करके और चार पैसे के पीछे और अन्य किसी देश में जाकर के और चार पैसे के लालच में, भौतिक सुख सुविधा के लालच में, क्योंकि सीमा नहीं की थी। आजीविका के साधन तो यहां भी ढूंढे जा सकते थे अपने देश में, लेकिन आजीविका के साधन हम देश से बाहर ढूंढ करके वहां धन संपदा कमाते हैं। और वहां का जो कहना चाहिए कल्चर तो नहीं है, वहां तो सभ्यता भर है, सिविलाइजेशन है। कल्चर तो भारत में है, संस्कृति तो भारत में है, जहां संस्कार बनते हैं वहां तो सिर्फ एक सभ्य मनुष्य की तरह जीना सिखाया जाता है, लेकिन संस्कारवान बनना ये तो वहां नहीं सिखाया जाता, ये मान के चलिएगा। तब ये सीमाएं अगर हमने अपनी निर्धारित कर ली हों, अपने परिवार की सीमाएं इस तरह निर्धारित कर दी जाए तो बताइए हमारे समाज का ही नहीं, हमारे राष्ट्र का, प्राणी मात्र का, सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि हमारे भौतिक सुख सुविधाओं पर हमें नियंत्रण करना पड़ेगा, उस लालच में नहीं पड़े। मैं तो कई बार सोच करके दंग रह जाता हूं कि आत्म कल्याण के लिए दी गई ये प्रक्रिया, इसलिए मैंने वहीं से शुरू किया था, आत्म कल्याण के लिए दी गई ये प्रक्रिया देश के कल्याण में भी कारण बन जाएगी अगर हम अपने देश में ही अपनी आजीविका के साधन करेंगे, अन्यत्र जाके आजीविका नहीं करेंगे। ये सीमा दिग्व्रत ले लिया, दसों दिशाओं की सीमा कर ली। बताइए आत्म कल्याण के साथ साथ सबका कल्याण हो गया, पाप से भी मुक्त हो गए हम, क्योंकि उधर बाहर जितना भी होने वाला था पाप उससे हम बच गए। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर अपने दसों दिशाओं में आवागमन की सीमा निर्धारित कर ले तो उस सीमा से बाहर सारे पापों से मुक्त होने से वो एक महाव्रती मुनि के समान है। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंद तराश्चरण मोह परिणाम सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। ऐसा दिग्व्रत को धारण करने वाले के लिए आचार्य भगवंतों ने, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि जो दसों दिशाओं की सीमा करके उससे बाहर के पाप से मुक्त हो जाता है वो मानिएगा उस सूक्ष्म पाप से भी मुक्त हो गया है, इसलिए वो महाव्रती के समान है। क्यों? ये वही ले सकता है जिसके अंदर बहुत अल्प कषाय बची हुई है। प्रत्याख्यान नाम की कषाय जो संयम होने में बाधक बनती है वो भी अत्यंत अल्प बची हुई है। उस अल्प, उस मंद कषाय के वशीभूत होकर वो अभी महाव्रत नहीं ले पा रहा है, लेकिन उसने अपनी सीमा बना ली, सीमा के बाहर तो वो महाव्रती के समान ही और आचरण कर रहा है, इसलिए उसकी पीठ थपथपा रहे। इतनी ऊंचाई हम छू सकते हैं घर गृहस्थी में रहकर, मैं आपसे ये कह रहा हूं, दसों दिशाओं की सीमा बनाकर अपने आजीविका के लिए हम आसानी से और सीमित कर सकते हैं। आजीविका के साधनों को भी सीमित करना पड़ेगा, इसकी भी चर्चा कभी करेंगे। आज एक छोटा सा उदाहरण दे करके अपनी बात पूरी करता हूं। एक सभा में बाबा जी रोज प्रवचन करने से पहले और आंख उठा के देखते थे, जब तक एक वृद्ध और वृद्धा नहीं आते थे तब तक सभा शुरू नहीं करते थे। लोगों को ये बात बड़ी वो लगती थी कि काय हम आदमी नहीं है का, हम तो आए हैं, हम आ गए और जब तक भी वृद्ध और वृद्धा नहीं आएंगे तब तक बाबा जी भी, देखो बाबा जी का भी कैसा राग है,
साधु जी तो हो गए लेकिन राग है अबे भी जब तक नहीं आ जाए जब तक उनकी सभा शुरू नहीं हो प्रवचन नहीं शुरू हो। बाबा जी मुस्कुरा देते थे सुनते रहते थे कि हाँ केंदु क्या फर्क पड़ता है। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत देर हो गई 10 मिनट लेट आए वो दोनों वृद्ध दंपत्ति और आकर के क्षमा याचना पूर्वक सभा में बैठ गए। बाबा जी ने प्रवचन शुरू किए और फिर जब पूरे हो गए तो सबसे कहा कि आज तो बात पूरी जो बार बार मन में विकल्प उठ रहा है वो ठीक कर लिया जाए समाधान कर लिया जाए। ये लोग 10 मिनट लेट आए और हमने भी 10 मिनट देर से प्रवचन शुरू करे इस बात को सब लोग के सामने आज क्लियर कर लिया जाए। इनसे पूछें कि ये क्यों 10 मिनट देर से आए। तो जब उनसे पूछा तो उनने कहा कि अब इतनी बड़ी सभा में हम क्या कहें आज हमारे थे रात में चोर घुसे थे। ठीक है भाई चोर घुसे थे इसलिए तो अब इसमें तो कोई वाहवाही नहीं है चोर घुसे थे तो कल नहीं हमने तो वैसे इनको बहुत समझा अगर जी हमारी बात थोड़ी मान लेते तो इतनी बात नहीं बढ़ती और इतनी देर भी नहीं लगती। तो हुआ क्या कहते कुछ नहीं चोर घुसा हम दोनों जन जग रहे थे चुपचाप लेटे ही हते और वो घुसा तो हमने अपनी जीवन साथी से कहा कि अब देखो अब हल्ला न करियो चिमाने लेटे रहो वो इतनी मेहनत से आओ है तो जो ले जाने सो ले जान दो ताले जी। देखो आप जिसकी मर्यादा है जिसकी सीमा है उसको कहीं कोई विकल्प नहीं होता और जिसकी कोई मर्यादा नहीं है उसको तो निरंतर विकल्प ही है चाहे कितना आग्रह वे कभी उसका विकल्प नहीं मिटने वाला कभी उसका असंतोष नहीं मिटने वाला। मैं मर्यादा की बात कर रहा हूं। तो कहते कि ले लें दो उसको तो उस चोर ने जो जो लेना था सब लिया। अब लेकिन उसके मन में थोड़ी लालच और आ गई तो जीवन साथी करवट लेके लेटी थी सो एक हाथ उनका ऊपर था सो उसमें तो वो सोने का कड़ा था सो धीरे से उसने वो चोर ने उतारा सुनने कछु नहीं कही। अब जबकि कहले हमने बहुत समझा दी थी कि तुम बिल्कुल हिलियो डुलियो ने लेकिन पता नहीं इनके मन में का आई सो जैसे जी हिल डुल गई तो वो जो है भाग गया। अब वो भाग गया तो हम लोगों को बहुत दुख हुआ असल में उसी में जो देरा हो गई तो वो जो जीवन साथी थी वो कहने लगे हमारी को सुन लो हमने क्यों करवट बदली थी हमने सोची कि एक कड़ा तो रहेगा वो नीचे दबो हाँ सुबह और ऊपर हो जाए सुबह हल्ले जावे अब उतने भगवत हम क्या करें अब जी हमारे लिए ऐसा कह रहे हैं इसी विचार में होती हो गई। आप क्या समझे इससे कितनी निष्प्रयता है। मुझे ये उदाहरण इसलिए देना था बाबा जी ने कहा कि इसी वजह से मैं 10 मिनट जब तक ये नहीं आए दोनों दंपत्ति तो मेरे का रहा क्योंकि प्रवचन तो सुनाना इन्हीं के लिए मेरा सार्थक है जिनके जीवन में ऐसी मर्यादाएं और ऐसा धर्म प्रवेश कर गया है इसलिए बाकी सबके भी समझ में आ गया आपके भी आ गया होगा समझ। भैया अपने को धर्म किताब तक सीमित नहीं रखना अपने को हमेशा जब भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की बात ही धर्म है वो जब जब भी अपन को ध्यान में आवे तो उसको अपने जीवन में धारण करना और ऐसी निष्प्रहता अपने जीवन में आती जाए जिससे हम अपनी मर्यादाएं निर्धारित करते जाएं और मर्यादा में रह करके और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।